हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद् गीता तीसरे स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 30 से लेकर 37 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की आशा रखते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तराय तत्थाम
यदप्य सात्वी
मैत्रेय से विदुर की वार्ता। आज के इन श्लोकों में हम ये जानेंगे कि भगवान ने इस सृष्टि के निर्माण में जिन मुख्य तत्वों का प्रयोग किया है, उन मुख्य तत्वों को का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये जो पंचमहाभूत है उनका निर्माण कैसे हुआ, और इन सब वस्तुओं के निर्माण के लिए जो मुख्य वस्तु है वो क्या है, भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान का दृष्टिपात। हर एक वस्तु जैसे हमने कल पढ़ा, कुछ नहीं था, केवल भगवान, और भगवान ने जीव पर कृपा करने की ठान ली कि अब तो इन अभागे जीवों को, जो कि न जाने कितने जन्मों से मुझसे दूर रहकर दुखी हो रहे हैं, उनके ऊपर कृपा करनी है। तो भगवान ने जैसे ही इतना सोचा, तो उसी समय प्रकृति के बनने का शुभारंभ हो गया, और उसके बाद नित्य काल, और उसके उपरांत महातत्व का निर्माण होता है। और यह महातत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणित हो जाता है, और मिथ्या अहंकार तीन अवस्था में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं, और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों, सत्तो, रजो तथा तमो, इन तीन में प्रदर्शित होता है। उसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, अहं तत्त्वात् विकर्णाणां मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यत् अहं तत्त्वात् विकुर्वारान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यत् अहं तत्त्वात् विकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यत्। अब ये जो अहंकार है, जो कि महत्तत्व से उत्पन्न हुआ, अहम तत्वात भी गुणवान, अहम तत्वात का मतलब मिथ्या अहंकार जो अभी उत्पन्न हुआ, वी गुणवाणात का मतलब होता है रूपांतरित हो जाता है। ये मिथ्या अहंकार किसमें चेंज होता है, मन यानी मन वायकारकत अर्थात सत्वगुण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अभी मन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक, और मन यानी मन का प्राकट्य होता है। अहंकार के बाद मन का प्राकट्य होता है, और फिर
उसके उपरांत जब इस मिथ्या अहंकार में सत्वगुण का मिश्रण होता, अभी गुण तो है ना प्रकृति में, अभी वैकारिका यानी सत्वगुण के साथ अंतःक्रिया अभूत यानी उत्पन्न हुआ, वैकारिका अर्थात अच्छाई अंतःक्रिया द्वारा च ये भी मना च मना भी ये मना ये सारे देवा यानी देवता, यानी जब अहंकार के साथ सत्वगुण का मिश्रण हो गया तो मन का निर्माण हुआ। और आगे बता रहे हैं कि यही क्रिया से एक और वस्तु का भी निर्माण हुआ, वो क्या है, वैकारश्च ये देव्या, जितने भी देवी देवता हैं जो इस भौतिक जगत में अलग अलग चीज़ों को नियंत्रण कर रहे हैं वो भी अहंकार और सत्वगुण के मिश्रण से, वैकारश्च ये देवा, वो देवता भी उत्पन्न हुए हैं। अर्थ घटना संबंधी अभिव्यंजनम यानी भौतिक ज्ञान यत स्रोत, अनुवाद देखिए,
मिथ्या अहंकार सत्वगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रदान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत यानी तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके घटना प्रदान जगत में संपूर्ण वस्तुओं का स्रोत है। सबसे पहले मिथ्या अहंकार है, ठीक है, और वो किसी भी गुण के साथ जब वो उसका मिलन होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके किसी भी गुण के साथ अंतःक्रिया करता है और घटना प्रदान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत बनता है। और फिर हर वस्तु किस तरह से उसी के कारण निर्माण होती है, जैसे मिथ्या अहंकार सत्वगुण से जब मिला तो उससे मन का निर्माण हुआ और उसी के साथ साथ सारे देवता भी इसी क्रिया से निर्माण होते हैं। और उसके बाद क्या होता है,
ज्ञान कर्म मायानी च अहंकार के साथ जब रजोगुण की अंतःक्रिया होती है फिर क्या उत्पन्न होता है, शब्दार्थ देखिए,
तैजसानी अर्थात रजोगुण, इंद्रियाणि यानी इंद्रियां एव निश्चय ही, ज्ञान यानी दार्शनिक चिंतन, कर्म यानी सकाम कर्म, मायानी यानी प्रधान रूप से, च यानी भी, यानी जब ये जो अहंकार है मिथ्या अहंकार वो रजोगुण के साथ जब उसका अंतःक्रिया होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तेजसानी यानी रजोगुण, उससे क्या उत्पन्न होता है, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी मतलब सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी और कर्म इंद्रियां भी। वो जब मिथ्या अहंकार रजोगुण के साथ अंतःक्रिया करता है तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का निर्माण होता है और इसके नतीजे में क्या होता है, ज्ञान कर्म मयानी, ज्ञान कर्म मयानी मतलब ज्ञान जो ज्ञानी जन होते हैं दार्शनिक चिंतन जो करते हैं फिलोसफी जो फिलोसफर होते हैं वो भी और जो सकाम कर्म करते हैं वो भी, वो कैसे उत्पन्न हुए, वो तब उत्पन्न हुए जब जो मिथ्या अहंकार है उसने रजोगुण के साथ अंतःक्रिया की तो सारी इंद्रियां बनी ना, इंद्रियां जो वो होते हैं फिलोसफर होते हैं वो ज्ञान इंद्रियों को ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो सकाम कर्मी होते हैं वो कर्म इंद्रियों के साथ कार्य करते हैं, तो इन सब का निर्माण हुआ। अनुवाद देखिए,
इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है, अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म
रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। वाक्य से सुनिए, इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतीव दार्शनिक चिंतन परज्ञान तथा सकाम कर रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझा रहे हैं कि मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। अब मेन तो इसका काम यही है कि जीव को देहात्म बुद्धि में लेके आए, मिथ्या अहंकार, मैं कुछ हूँ। तो पहली बात, जब हम कुछ हैं यानी हम भगवान से कुछ अलग हैं, तो पहला इसका मिथ्या अहंकार का प्रधान काम क्या है कि वो ईश्वर विहीनता करा देता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, और दीर्घकालीन तक ऐसे सकाम करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। अब श्रील प्रभुपाद जी ने दो बातें बताई कि जब जीव, पहला जीव का कार्य क्या है, वास्तविक अहंकार क्या है, मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन जब जीव इस वास्तविकता को, स्वाभाविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता है तो क्या करता है, तो वो स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहता है, और उसके लिए मुख्यतः दो टाइप का कार्य करता है स्वतंत्र सुखी होने के लिए। सबसे पहले तो वो सोचता है, जैसे हम सब सोचते हैं, अभी तक हम लोग पहली स्टेज पर हैं, कैसे इंद्रियों को आनंद दूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, कैसे अपने आप को एंजॉय कराऊं, है ना। सर्वप्रथम अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता, और इस हम तो इतने निगरणीय हैं, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति भौतिक जगत में चाहते हैं, इससे थोड़ा ऊपर जाते सकाम कर्मी तो वो क्या करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और स्वर्ग में जाने की चेष्टा करते हैं। वो फिर देवताओं की पूजा करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर आनंद करें, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हताश हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति हो नहीं पाती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, इंद्रिय को तृप्त करना ऐसे ही है, उसकी वांछित वस्तु प्रदान करना ऐसे ही है जैसे अग्नि के अंदर ईंधन डालना। तो कभी भी अग्नि ईंधन डालने से संतुष्ट नहीं होती बल्कि और भड़कती है, तो फिर क्या होता है, तो दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करने के बाद जब वो हताश हो जाता है तो क्या सोचता है, तो दार्शनिक चिंतक बन जाता है, फिर फिलोसोफर बन जाता है, और क्या करता है, और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि जब कोई सोचता है कि मैं भगवान से एक हो जाऊंगा और फिर एक होकर भगवान बन जाऊंगा, ये माया का अंतिम पाश है। जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेता है, फिर भी तो ये तो ईश्वर विहीनता ही है ना, वो भगवान की दासता को तो स्वीकार नहीं करता, वो भगवान बनना चाहता है। एक लड्डू तो हाथ में आया नहीं, उससे संतुष्टि हुई नहीं, तो मैं पूरी प्लेट खा जाऊं। तो मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग, कि अभी फिलोसोफर बनना छोड़ दो, भगवान के विषय में दार्शनिक चिंतन करना छोड़ दो, इसी से मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता। परब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लंघ्य है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में हुई है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। तो ये मिथ्या अहंकार को पार करने का सरल तरीका है कि शुद्ध वैष्णव जो कि प्रामाणिक अधिकारी हैं, जो 12 महाजनों की परंपरा से आए हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा यदि हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हम अपने वास्तविक स्थिति को समझ सकेंगे। जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, फिर हम इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं करेंगे और ना ही भगवान के अंदर लीन होने की इच्छा होगी। इच्छा केवल यही होगी कि हम अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात भगवान की दास्यता को स्वीकार करके भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और भगवान की सेवा एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य, भगवान को प्रसन्न करना हो जाता है। तो ये जो माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको बहुत बहुत कठिन है पार करना। ऐसे प्रयास के द्वारा हम अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा या अपनी इंद्रियों की शक्ति के द्वारा नहीं पार कर सकते, ये तो केवल शरणागति ही इस माया को पार कर सकता है। भगवान की शरण में आने का इस कलयुग में केवल एक ही रास्ता है कि हमको भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहना चाहिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते
तामसो भूत सूक्ष्मादे यतः खं लिंगमात्मनः तामसो भूत सूक्ष्मादे यतः खं लिंगमात्मनः। तामसो अर्थात तमोगुण से, जब यह महत्त्व तमोगुण से अंतःक्रिया करता है फिर क्या होता है, भूत सूक्ष्मादि यानी सूक्ष्म इंद्रिय जो हमारी सूक्ष्म इंद्रिया है, कौन सी, मन बुद्धि अहंकार, और यतः यानी जिससे खम, खम का मतलब होता है आकाश। सूक्ष्म इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार और उसके परिणाम में खम यानी आकाश का उदय होता है। लिंगम यानी प्रतीकात्मक स्वरूप आत्मनः यानी परमात्मा। ये जो खम है यानी जो आकाश है वो भगवान का प्रतीकात्मक स्वरूप है कि भगवान तो बहुत विभू है ना, उनको कोई देख नहीं सकता, उनको कोई समझ नहीं सकता। तो जो लोग तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति कर ही नहीं सकते, फिर उनके लिए आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि भगवान एक खला की तरह है, खम आकाश की तरह है। शब्दार्थ सुनो,
तामस अर्थात तमोगुण से भूत सूक्ष्मादि अर्थात सूक्ष्म इंद्रिय विषय यतः जिससे खम यानी आकाश लिंगम यानी प्रतीकात्मिक स्वरूप आत्मना यानी परमात्मा का। अनुवाद,
आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मिक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मिक प्रतिनिधित्व है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक स्तुतियों में कहा गया है एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मिक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुणों में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते, उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मिक अभिव्यक्ति है। अब यहाँ तक बताने के बाद मैत्रेय मुनि अब ये बताएंगे कि किस तरह से भगवान अलग अलग वस्तुओं पर जो जो कुछ अभी निर्माण हुआ है ना, अभी जैसे नित्य काल है, आकाश है और मन है, इस तरह से जो जो अभी निर्माण हुआ है उसके ऊपर भगवान पहले दृष्टिपात करते हैं और उसके साथ साथ दो चीज़ें और, नित्यकाल और बहिरंगा शक्ति। नित्यकाल और बहिरंगा शक्ति, मतलब बहिरंगा शक्ति जो भगवान की ये 24 तत्व हैं उनको मिश्रित करते हैं, भगवान उसको उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह से अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जितनी भी वस्तुएं हैं उनका प्राकट्य होता है। अब देखो मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है और हमको ये इसलिए समझना है क्योंकि ये सृष्टि की रचना है, अभी तक कुछ नहीं बना, प्रत्येक वस्तु बन रही है। तो कैसे बन रही है, अब हम श्लोक नंबर 33 में देखेंगे।
काल मायांश योगेन भगवत विक्षितं
हरे कृष्णा,
काल मायांश योगेन भगवत विक्षितं नभः नभसोनु श्रितं स्पर्शम् विकुर्विन् विकुर्वन् निर्ममेनिलम् कालमायाशयोगेन भगवत् वीक्षितं नभः नभसोरु श्रितं स्पर्शम् विकुर्वन् निर्ममेनिलम् शतात्
काल माया, काल मतलब जो नित्य काल है, माया मतलब बहिरंगा शक्ति, अंश योगेना अर्थात अंशित मिश्रित, उनको मिश्रण करके भगवत वीक्षितम, उसके बाद भगवत यानी भगवान की वीक्षितम मतलब दृष्टिपात, फिर दृष्टिपात होता है भगवान का, उससे क्या होता है नभ यानी आकाश, और नभसह यानी आकाश से अनुसृतम अर्थात इस तरह संस्पृश संपर्श इस तरह स्पर्शित होकर, फिर नभ से क्या होता है स्पर्शम स्पर्श, यानी हम जो स्पर्श ये जो इंद्रियों के विषय है ना उनके विषय में बताया, स्पर्श इंद्रियों का विषय है ना, तो इनको तन्मात्रा कहते हैं। अब स्पर्श का विकुर्वत यानी रूपांतर होकर निर्ममे यानी निर्मित हुआ, अनिलम यानी वायु, अब उससे स्पर्श और स्पर्श से वायु का निर्माण होता है। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात
भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रण मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। समझ में आया, वापिस से सुनिए। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। श्रील प्रभुपाद की जय।
अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी भौतिक सृष्टियाँ सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं, सूक्ष्म होती है पहले फिर स्थूल बनती है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ, आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई जो नित्य काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। अब नित्य काल बहिरंगा शक्ति और भगवान ने अंशतः मिश्रण किया, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये जो आकाश और आकाश के इस पर से स्पर्श जो है, आकाश स्थूल है उसके बाद स्पर्श, ठीक है, यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई, ठीक है, उसके बाद वायु, और उसी तरह अन्य सारे स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ, ध्वनि में ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। अब देखो ये सब क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आने की परिक्रिया है। अब ये सारी जो अभी श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में बताई ना उन सब का निर्माण होगा
उसके विषय में बताएंगे कैसे होगा। ध्वनि आकाश में, ठीक है, आकाश निर्मल हुआ तो उससे ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, ठीक है। स्पर्श वायु में, वायु मना जो वातावरण में वायु है ना उसके कारण स्पर्श का प्राकट्य हुआ। उसके बाद रूप अग्नि में, ठीक है, रूप अग्नि में यानी रूप जो है वो तो सूक्ष्म है, फिर अग्नि स्थूल है। स्वाद जल में, ठीक है, स्वाद जो सूक्ष्म है उसमें वो जल में परिवर्तित, और गंध पृथ्वी में विकसित हुई। गंध मना जो सुगंध है या दुर्गंध है बू, और वो पृथ्वी में विकसित हुई, और वो किस तरह से होगी वो आगे हम पढ़ेंगे। शुकदेव गोस्वामी और मैत्रेय मुनि ये दोनों ही बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं अनलोपी, अनल अर्थात वायु, अपि मना भी, विकुर्वाणो अर्थात रूपांतरित होकर, नभसा यानी आकाश में, उरुबल अन्विता यानी अत्यंत शक्तिशाली, ससर्ज उत्पन्न किया रूप यानी रूप, तन्मात्रा मतलब इंद्रिय अनुभूति यानी इंद्रियों के जो विषय हैं, तन्मात्रा ज्योति यानी बिजली, लोकस्य संसार के, लोचनम यानी देखने के लिए प्रकाश। अभी यहाँ से अनुवाद देखिए, तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति यानी तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, ठीक है। अब वायु ने आकाश के साथ अंतःक्रिया करके, वायु और आकाश के अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति यानी तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया। तन्मात्रा रूप रस शब्द स्पर्श स्वाद गंध ये सब, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हुई हो गई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है, और उसके उपरांत जो है ना ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, फिर जो रूप है वो बिजली में यानी ज्योति में परिवर्तित हो गया जिससे जीव जो है संसार में प्रकाश के कारण देख पाए, ठीक है। क्योंकि अगर नेत्र हैं मतलब इंद्रियां हैं लेकिन अगर संसार में प्रकाश नहीं होगा ना तो हमारी इंद्रियां अकेले से नहीं देख सकती हैं, उसको देखने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता है, है ना। कभी आप किसी गुफा में, अंधेरी गुफा में चले जाओ जहाँ पर प्रकाश नहीं हो और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं देख सकते हो ना। सूर्य प्रकाश होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। उसी तरह से आपके पास कान है लेकिन अगर कान के अंदर वो शब्द नहीं, मतलब वो जो शक्ति नहीं है शब्द प्रदान करने की, श्रवण करने की, तो फिर कान का गोला होना काफ़ी नहीं है। तो ये सब इस तरह से भगवान ने जीव के सुविधा के लिए समस्त इंद्रियां और सारे वस्तुएं उत्पन्न की। आगे कहते हैं मैत्रेय ऋषि कि जल और स्वाद कैसे उत्पन्न हुए, उसके लिए वे बताते हैं
परवीक्षितं आदत्तां घोरसमयं कालमायांश योगतः अनिलेन वितं ज्योति विकुर्वत् परवीक्षितं आधत्ताम्भोरसमयम् कालमायांशयोगतः.
शब्दार्थ अनिल, अनिल मना वायु, और अन्वितम अर्थात अंतः क्रिया करते हुए, ज्योति यानी बिजली. अब वायु और बिजली की अंतः क्रिया से क्या हुआ, विगुणवत यानी रूपांतरित होकर परवीक्षितम अर्थात ब्रह्म द्वारा दृष्टिपात, और केवल उनके अकेले अंतः क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, ये परवीक्षितम बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात भगवान की दृष्टि होती है. और उसके बाद आदत्त उत्पन्न हुआ, अम्ब रसमय स्वाद से युक्त रस, अभी सॉरी स्वाद से युक्त जल. अभी क्या है कि वायु और बिजली यानी ज्योति के अंतःक्रिया पर जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो बहुत ही सुस्वादु जल की जल का प्राकट हुआ. और फिर काल यानी नित्य काल का मायांश तथा बहिरंग शक्ति का योगितः मिश्रण द्वारा, और इस तरह से काल नित्य काल जो है वो और बहिरंग शक्ति का मिश्रण होता है, और उससे जल और स्वाद ये दोनों उत्पन्न होते हैं. अनुवाद देखिए, जब वायु में बिजली की क्रिया हुई तो उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, और उस समय नित्यकाल तथा बहिरंग शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई. वापस से देखिए, जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्यकाल तथा बहिरंग शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई. तो यहाँ पर जल और स्वाद भी उत्पन्न हो गए. उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पृथ्वी और सुगंध वो किस तरह से उत्पन्न हुई. वे कहते हैं ज्योतिशाम्भोनुसंस्पृष्ट विकुर्वत् ब्रह्मवीक्षितम् महिम गंध गुणामाधा कालमायांशयोगतः ज्योतिशाम्भोनुसंस्पृष्टम् विकुर्वत् ब्रह्मवीक्षितम् महिम गंध गुणामाधा कालमायांशयोगतः ज्योतिशाम्भोनुसंस्पृष्टम्. ज्योतिषा अर्थात बिजली, अम्ब अर्थात जल यानी बिजली और जल, अनुसंस्पृष्टम् अर्थात इस प्रकार उत्पन्न हुए, विकुणवत यानी रूपांतरित क्रिया, और उसके बाद ब्रह्म वीक्षितम्, ब्रह्म यानी ब्रह्म भगवान के द्वारा वीक्षितम् यानी दृष्टिपात किया गया. उससे क्या हुआ, महीम, महीम माना पृथ्वी, गंध यानी गंध बू, गुणाना गुण, आधात अर्थात उत्पन्न किया गया, काल यानी नित्य काल, माया अर्थात बहिरंग शक्ति, अंशतः अर्थात अंशतः, योगतः अर्थात अंत मिश्रण से. अनुवाद, तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया, और फिर उनमें से नित्यकाल तथा बहिरंग शक्ति का मिश्रण हुआ. इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है. एक बार फिर, तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया, और फिर उसमें नित्यकाल तथा बहिरंग शक्ति का मिश्रण हुआ. इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है. श्री प्रभुपाद की जय.
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। देखो हर किसी में लिखा हुआ है ना ब्रह्म वीक्षितम, तो भगवान जब तक नहीं दृष्टिपात करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रत्येक रूपांतरण में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो उसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान की दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंग प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि आकाश में तो सिर्फ एक ही गुण होता है, लेकिन जब ये आकाश उसके ऊपर भगवान की दृष्टिपात होती है, अंतक्रिया के बाद नित्य काल और बहिरंग शक्ति जब इसमें मिलते हैं, वायु उत्पन्न होती है, जिसमें वायु में क्या होता है, दो गुण पाए जाते हैं, एक ध्वनि भी होती है और दूसरा स्पर्श होता है। उसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श से कारण स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न होता है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श तथा रूप, और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध। अब ये सारे ये तन्मात्राएं हैं, ठीक है, ये सारे किस में हैं, ये सारे अंतिम, क्योंकि जैसे जैसे मिश्रण होता जाता है तो गुण बढ़ते जाते हैं ना। तो यहाँ पर बताया कि भौतिक विकास की अंतिम अवस्था क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर पांचों गुण हैं। गुण माना ये तन्मात्रा पांचों हैं। पृथ्वी में ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, स्वाद भी है तथा गंध भी है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते हैं। जिस तरह के जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे रंग भरे हों तो क्या वो आपस में ही बनकर मिलकर कोई चित्र बना सकते, नहीं, उसको तो किसी चित्रकार की आवश्यकता होती है। यह सतह प्रणाली वास्तव में भगवान की दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में निम्नलिखित हुआ, माया दक्षिण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तता। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करते हैं, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो, शीला प्रभुपाद की, तो शीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि चाहे कितने भी भौतिक तत्व हैं, उनके द्वारा जो बन रहा है, सबका मेन कारण के सर्व कारण कारण वो भगवान है, लेकिन जो जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, भौतिक दृष्टि से भले बहुत बड़े विज्ञापित हों, बहुत बड़े बड़े विज्ञानी हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, वो भले कुछ भी हों, लेकिन वो हैं तो बुद्धिहीन हैं, क्योंकि कम बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है, बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल रही हैं और सारी चीज़ें खुद ब खुद उत्पन्न हो रही हैं, खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा है, ये सब भगवान के दृष्टिपात करने के कारण होता है।
इसी बात को मैत्री मुनि भी इस श्लोक में बता रहे हैं।
भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः।
शब्दात्
भूतान यानी सारे भौतिक तत्व, नभ आदि नाम, नभ माने आकाश, आदि माने इत्यादि, जितने भी भौतिक तत्व हैं वो सारे के सारे यत यत जिस तरह तथा जिस तरह भव्य अर्थात हे सौम्य अवर निष्कर्ष निष्कृष्ट वरम श्रेष्ठ तेषाम उन सबों का पर यानी परब्रह्म अनुसंसर्गत यानी अंतिम स्पर्श यथा जितने संख्यम यानी गिनती गुणान यानी गुण विदु यानी आप समझ सकते हैं। अनुवाद देखिए, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं,
हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जितने भी गुण हैं और जितने भी तन्मात्रा हैं उन सब का कारण क्या है, भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण ही ये सब। इसका मतलब क्या है जानते हैं?
इसका मतलब है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा शरीर है या फिर हमारे शरीर से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, उन सब का वास्तविक कारण जो है वो भगवान है। और क्योंकि भगवान ने ही हमें ये सब कुछ दिया है, हमें इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर को चलाने के लिए प्रत्येक वस्तु, जल जिसको हम पीकर इतना आनंदित होते हैं, पृथ्वी जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न शाक फ्रूट सब निकलते हैं उनको खाकर संतुष्ट होते हैं, ये प्रकृति जो इतनी सुंदर है जिसको देखकर आनंदित होते हैं, इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं जिसको श्रवण करके आनंदित होते हैं, उन सब का वास्तविक कारण है, सर्व कारण कारणम, वो भगवान श्री कृष्ण है। और क्योंकि भगवान ने हम पर इतने सारे उपकार किए हैं, इतनी सारी करुणा की है, और सबसे बड़ी करुणा कि हमको मनुष्य देह प्रदान करके भगवान ने हमको खुद को प्राप्त करने के योग्य बना दिया। याद रखिए भक्तों, कभी ये मत सोचना कि ये सब शास्त्र में इतना मुश्किल बताया जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता, हम भला कैसे समझें। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस जिस व्यक्ति के को जितनी जितनी बुद्धि की आवश्यकता है भगवान ने उसको उतनी दे दी है। कभी ये मत कहना ज्ञान दान कुछ कर्म न दानो सार जाना तेरी, ये हम भगवान के सामने जाते हैं ना तो कितना मासूम बन के जाते हैं कि भगवान हम तो आपके छोटे से बच्चे हैं, हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, हम क्या समझे शास्त्रों को, ये सिर्फ भगवान के सामने कहने की बात है। बाकी संसार की जब कोई कार्य आता है तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हम ही होते हैं, हमारे से ज़्यादा चतुर और कोई व्यक्ति नहीं। किसी को ठगने की बात हो, कोई बिजनेस करने की बात हो, किसी को नीचा दिखाने की बात हो, किसी की निंदा करने की बात हो, किसी को हराने की बात हो, तब तो हम सबसे ज़्यादा चतुर बनते हैं। लेकिन भगवान को, भगवान के शब्दों को समझने की जब बात आती है तो कहते भाई ये सब हमें समझता नहीं है। तो याद रखिए, भगवान ने जिस जिस को मनुष्य देह दिया है उस जीव को भगवान ने स्वयं तक पहुंचने के काबिल बनाया है, और उसके लिए जो जो वस्तु की आवश्यकता है योगक्षेमम वहाम्यम वो स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। हमें केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है, हमें केवल भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना है कि भगवान हमें पूरी श्रद्धा है आपके ऊपर, और हम अनन्य भावे, अनन्य का मतलब है केवल कृष्ण के आधारित। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम। यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर एक प्रत्येक वस्तु की सुरक्षा करूं और प्रत्येक वस्तु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वो प्रदान करूं, तो मेरी भी एक शर्त है, अनन्य चेता अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्यास, और किसी का नहीं केवल मेरा चिंतयन्तो माम। अगर तुम केवल मेरा चिंतन करोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारी प्रत्येक जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी सुरक्षा करूँगा, जो नहीं है वो प्रदान करूँगा। तो भक्तों, हम सबको भगवान का प्रतिक्षण प्रतीक पल धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना जितना भगवान के करीब जाते जाएंगे उतना उतना भगवान हमारे निकट आते जाएंगे, और जितना भगवान हमारे निकट आएंगे उतना ही माया और भौतिक कष्ट हमारे से दूर होते जाएंगे और हम नित्य आनंद का अनुभव करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।